ये कहते हुए इनायत जोर जोर से होने लगती है। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी और उसके आंसुओं में दर्द नजर आ रहा था। बहुत देर तक रोने के बाद जिब्लान ने इनायत को समझाते हुए कहा, अच्छा इनायत, मेरी बात सुनो। देखो, रोना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अब तुम ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा मत करना। तुम्हें उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ हैंडल कर लिया है। मैंने शहर से बाहर एक फ़्लैट लिया है। हम लोग यहाँ से भागकर कुछ दिनों तक उसी फ्लैट में रहेंगे और फिर वहाँ से कहीं दूसरे शहर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता है। और हाँ, मैंने एक वकील से भी बात की है। उसने मुझसे कहा है कि वो तुम्हारा तलाक करवा देगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनायत बुरी तरह से घबरा जाती है। उसके कानों में रियाज के शब्द गूंज रहे थे। उसने डरते हुए जिब्रान से कहा, जिब्रान, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो इनायत। वो हमें कैसे पकड़ सकता है? उसे हमारी प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो हमें कभी नहीं पकड़ सकता है। लेकिन इनायत, हमारे इस प्लान को सक्सेस करने के लिए तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी। तुम्हें किसी भी तरीके से उस हवेली से बाहर निकलना होगा। इनायत घबराते हुए कहती है, नहीं जिब्रान, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पर बहुत सख्त पहरा है। मुझे हवेली के बाहर झांकने तक नहीं दिया जाता है, तो मैं बाहर कैसे आऊँगी? वैसे भी रियाज ने पहले ही सबको इस बात की चेतावनी दे दी है कि कोई भी उसकी इजाज़त के बिना हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगा, तो फिर मैं हवेली के बाहर कैसे आ सकती हूँ? जिब्रान, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवेली में कितनी सुरक्षा है ये देखने के लिए मैं 2 दिन पहले हवेली के आसपास आया था, पर वहाँ पर मौजूद गार्ड ने मुझे हवेली के आसपास भटकने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके पास जो बंदूक थी वो हाईटेक थी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं दोबारा हवेली के आसपास नज़र आऊँगा तो वो उस बंदूक से मेरी जान ले लेंगे। इसलिए मुझे वहाँ से हटना पड़ा। मुझे पता है कि वहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी है, लेकिन फिर भी इनायत, तुम्हें कोशिश करनी होगी। तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना होगा, तभी हम यहाँ से भाग सकते हैं। इनायत कुछ सोचती है और फिर कहती है, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर कैद हो जाऊँगी। इसलिए मुझे यहाँ से भागने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करनी ही होगी। जिब्रान, मैं कुछ करती हूँ। जिब्रान ने भी इनायत से कहा, ठीक है इनायत, तुम कोशिश करो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर आईना चाची जन्नत और अमल के कमरे में थी। उन्होंने जन्नत और अमल को देखते हुए कहा, जन्नत, अमल, देखो, रियाज को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा तुम दोनों पर। कम से कम जूस तो पी लो। पर जन्नत और अमल अपने हाथ बांधे हुए बैठी थी और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। आईना चाची ने हार मानते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम दोनों को जितनी भूख हड़ताल करनी है तुम दोनों कर सकती हो, लेकिन रियाज की इजाजत के बिना मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम जानती हो ये खतरनाक हो सकता है। दरअसल जन्नत और अमल इस वक्त इस हवेली से बाहर जाने की जिद लगाए बैठी हुई थी, क्योंकि उनके कॉलेज शुरू हो चुके थे और उन्हें अपना असाइनमेंट सबमिट करना था। ये उन दोनों का कॉलेज में लास्ट ईयर है, लेकिन जिस तरीके से रियाज ने उन्हें घर में कैद करके रखा हुआ है, ऐसे में तो कॉलेज जाना दूर की बात है। वो दोनों तो हवेली के बाहर भी नहीं जा सकती हैं। तभी मुराद वहां आता है और उन्हें देखकर कहता है, जन्नत, अमल, मैंने भाईजान से बात की है और उन्होंने कहा है कि तुम दोनों सिक्योरिटी के साथ कॉलेज जा सकती हो, लेकिन अपना असाइनमेंट सबमिट करवा के तुम लोग सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में ही जाओगी और जब तक तुम्हारे क्लासेस खत्म नहीं होती है तब तक तुम कैंपस से बाहर नहीं निकलोगी। मुराद की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर क्या था, दोनों जल्दी जल्दी तैयार होती हैं और उसके बाद अपने कॉलेज के बैग को पैक करने लगती हैं। आईना चाची उनके पीछे नाश्ते की प्लेट लेकर खड़ी थी। वो उन दोनों को देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों कॉलेज जा ही रही हो तो कम से कम कुछ खा तो लो, वरना सारा दिन भूखी रह जाओगी। अमल ने जल्दी से अपनी बुक्स को बैग में रखते हुए कहा, नहीं चाची, वैसे ही बहुत लेट हो गया है, नाश्ता करने बैठेंगे तो और लेट हो जाएगा। देखिए 9:30 बज गए हैं और 10:30 बजे हमारी पहली क्लास है। लेकिन आईना चाची उन दोनों को जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और उन्हें बिठाते हुए कहती है, जब तक तुम दोनों नाश्ता नहीं कर लेती मैं तुम्हें घर से निकलने नहीं दूंगी। अब इसके लिए भले ही रियाज से मेरी लड़ाई क्यों ना हो जाए। इनायत भी अब तक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई थी और उसके साथ नूर थी। इनायत पराठे के टुकड़े को तोड़ते हुए नूर को खिला रही थी तो अमल और जन्नत ने इनायत को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। मुराद ने इनायत से कहा, वैसे भाभी आप भी तो कॉलेज में हो ना, वैसे क्या पढ़ रही हैं आप कॉलेज में? इनायत मुराद को देखने लगती है तो वो पाती है कि सबकी नजरें उसकी तरफ ही हैं। इनायत ने सबको देखते हुए धीरे से कहा, हाँ मैं कॉलेज के 2nd ईयर में हूँ, अगले साल मेरा लास्ट ईयर है और मैं कॉलेज में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हूँ, फार्मेसी PhD करनी है मुझे। इनायत की बात सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। अमल हैरानी से कहती है, क्या बात कर रही है भाभी, आप मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हैं? वाह, ये तो कितना अच्छा है ना, हमारे पूरे खानदान में कोई भी नहीं है जो इस तरीके की पढ़ाई करता है। मैं और जन्नत तो MBA कर रहे हैं क्योंकि आगे जाकर हमें रियाज भाई का बिजनेस संभालना है ना, हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं, पर हमारे कॉलेज में भी फार्मेसी और मेडिसिन नहीं है। लेकिन तभी जन्नत कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ हमारे कॉलेज में फार्मेसी और मेडिसिन नहीं है,
लेकिन याद है हमारे कॉलेज जाने के रास्ते में वो कॉलेज पढ़ता है ना, अरे वही जिसका नाम XYZ है, उसमें फार्मेसी और मेडिसिन पढ़ाया जाता है। और तुम्हें पता है वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर भी हैं जो इस कोर्स की क्लासेस लेते हैं, अमल भी कहती है। हाँ जन्नत सही कह रही है, भाभी आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं। लेकिन इस पर मुराद कहता है, हाँ बिल्कुल भाभी कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं, लेकिन तभी जब भाई इसकी परमिशन देंगे।